بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریے شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پویتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज सोमवार है। इस फंद की 14, शाबान की 23 और मार्च की 4 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप 60 में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। पत्र व्यवहार के हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir, जबकि ताजा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है pasttoday.ir/hi और हमारे फेसबुक का पता है pasttoday.hindi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण, उसके पश्चात आप सुनेंगे दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम फारसी साहित्य का अनमोल रत्न। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहतादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने कहा है कि गजा में नरसंहार और युद्ध अपराध की जड़ें जायनी कब्जे के 75 साल के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। जायनी सरकार में पाश्विक हमलों में शहीद होने वाले मजलूम फिलिस्तीनियों की संख्या 30,500 से अधिक हो गई है। इसराइल का आयरन डोम हैक हो गया है। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी ने अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तबून के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज गजा में जो कुछ हो रहा है वो नरसंहार और युद्ध अपराध है और इस अपराध की जड़ें ज़ायनी कब्जे के 75 साल के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। रविवार शाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति रईसी ने गैस निर्यातक देशों के सातवें शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर अल्जीरियाई सरकार को बधाई देते हुए ईरान और अल्जीरिया के बीच संबंधों को राजनीतिक सीमाओं से कहीं आगे करार दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने उपनिवेशवाद के खिलाफ अल्जीरिया के संघर्ष के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, हम उन सभी शहीदों का सम्मान करते हैं जो उपनिवेशवादियों के खिलाफ दृढ़ता, सहिष्णुता और इस्लाम व मातृभूमि के प्रति वफादारी के साथ खड़े थे। हम उनकी पवित्र आत्माओं को सलाम करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस्लामी गणतंत्र ईरान की उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति रईसी ने अल्जीरिया के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इस्लामी गणतंत्र ईरान के अनुभवों को साझा करने की तत्परता जताते हुए कहा,
हमें उम्मीद है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के विकास का आधार बनेगी। ईरान के राष्ट्रपति ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अल्जीरियाई सरकार के प्रयासों के समर्थन की घोषणा की और कहा, निसंदेह अगर विदेशी शक्तियां इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती तो सुरक्षा, शांति और स्थिरता के मैदान में इतनी चुनौतियां नहीं होती जितनी आज हैं।
ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरान और अल्जीरिया को आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में अधिक कदम उठाने होंगे। रविवार को अल्जीरिया की अपनी यात्रा के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने अल्जीयर्स में एक बैठक के दौरान कहा, दोनों देशों के बीच अच्छे राजनीतिक रिश्ते हैं और दोनों ही देश समान सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य रखते हैं। ईरान और अल्जीरिया के अधिकारियों के बीच ये बैठक अल्जीयर्स में गैस निर्यातक देशों के फोरम के सातवें शिखर सम्मेलन के इतर हुई। उन्होंने कहा कि ईरान महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति करने और उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक, कृषि और ज्ञान आधारित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला का उत्पादन करने में कामयाब रहा है। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, उद्योग, पेट्रोकेमिकल और व्यापार जैसे क्षेत्रों में ईरान और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार है।
इसराइल के पार्श्विक हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,534 से अधिक हो गई। गजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि गत 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 124 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। इस प्रकार 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,534 हो गई। गजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार गत 24 घंटों के दौरान ज़ायनी सरकार ने गजा पट्टी में 13 बार हमला किया, जिसमें 124 फिलिस्तीनी शहीद और 210 घायल हुए हैं। इसी प्रकार गजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि ज़ायनी सैनिकों ने 150 दिनों के दौरान चिकित्सा स्टाफ के 364 व्यक्तियों को शहीद किया, जबकि अस्पतालों के प्रबंधकों सहित चिकित्सा स्टाफ के 269 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ ज़ायनी सरकार के अपराध 150 दिनों से जारी हैं और इस संकट के समाधान के लिए प्रयास यथावत जारी हैं, परंतु ज़ायनी सैनिकों ने अपने अपराधों से एक बड़ी मानव त्रासदी उत्पन्न कर रखी है। ज़ायनी सरकार ने अपने पार्श्विक हमलों के साथ गजा पट्टी का कड़ा प्रवेशन कर रखा, जिसकी वजह से स्थिति और भयावह हो गई है।
हैकरों के गुट ने कहा है कि हमने इसराइल की रक्षा प्रणाली आयरन डोम को हैक कर लिया है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार हैकरों के गुट ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि आयरन डोम के एक भाग को हैक कर लिया है। हंजला नामक गुट ने टेलीग्राम पर बताया है कि उसने इसराइल के आयरन डोम को हैक कर लिया है। इस गुट ने कुछ तस्वीरों को प्रकाशित करके कहा है कि उसने आयरन डोम के रडार और उसे नियंत्रित करने वाले सिस्टम को हैक कर लिया है और उसके संचालकों के लिए चेतावनी संदेश भेजा है। इसी तरह इस संदेश में आया है कि हंजला नामक गुट ने आयरन डोम को हैक कर लिया है और हम रफा के साथ रहेंगे और ये चेतावनी है। इसी प्रकार हंजला गुट ने आयरन डोम की कुछ तस्वीरों को भी प्रकाशित करके कहा है कि हम तुम्हारे रडार पर हैं और तुम्हारे विमानों को आसमान में लक्ष्य बना सकते हैं, मगर हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हम अधिग्रहणकारियों की भांति बच्चों की हत्या नहीं करते हैं। यह एक चेतावनी और काम का आरंभ है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिका ने गजा में कुपोषण और भूखमरी की खबरों के बीच विमानों से खाद्य सामग्री गिराई है और तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। अमेरिकी एयरफोर्स ने भोजन के 30,000 पैकेट पैराशूट के जरिए गजा में गिराए हैं, जबकि सहायता एजेंसियों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि सहायता के सैन्य एयरलिफ्ट के बजाय वाशिंगटन को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो जमीनी रास्ते से अधिक सहायता के लिए रास्ता खोले। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि गजा में निर्दोषों के जनसंहार और भूखमरी के लिए अमेरिका भी बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि उसने इसके लिए ज़ायनी शासन की भरपूर मदद की और युद्ध विराम के हर प्रयास को नाकाम बना दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा तत्काल युद्ध विराम की मांग भी काफी क्षमा कीजिएगा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा तत्काल युद्ध विराम की मांग की भी काफी आलोचना हो रही है, क्योंकि 30,000 फिलिस्तीनियों के जनसंहार के बाद भी उन्होंने अस्थायी युद्ध विराम की मांग की है।
गजा युद्ध में पीड़ित फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इराकी प्रतिरोधी संगठनों ने इसराइल की सबसे बड़ी और व्यस्ततम बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया है। रविवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित एक बयान में आतंकवाद विरोधी प्रतिरोधकर्ताओं के एक समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने 2 दिन पहले हैफा बंदरगाह के रासायनिक भंडारण पर हुए हवाई हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है। बयान में कहा गया है कि यह हमला इराक और क्षेत्र में अन्य जगहों पर अमरीकी सैन्य उपस्थिति के विरोध और गजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया है। जब तक गजा में फिलिस्तीनी नागरिकों का नरसंहार जारी रहेगा, इस तरह की जवाबी कार्रवाई भी जारी रहेगी। इराकी रेजिस्टेंस ने पिछले महीने भी इसराइल के कब्जे वाले हैफा पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था।
इसराइली टीवी चैनल 14 की रिपोर्ट के अनुसार गजा युद्ध को लेकर इसराइली सेना में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं, जिसके बाद कुछ उच्च सैन्य अधिकारियों और जायन सेना की खुफिया इकाई के अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार गजा में निर्दोष फिलिस्तीनियों का जनसंहार करने वाले इसराइली सेना के अधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा, गजा में युद्ध जारी रखने के मुद्दे पर सेना के अधिकारियों के बीच विरोध को दर्शाता है। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों में इसराइली सेना के प्रवक्ता डैनियल हेगरी का नाम भी शामिल है। इससे पहले भी इसराइली मीडिया में गजा युद्ध को लेकर जायनी सेना में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को लेकर रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं।
शहबाज शरीफ ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अनिश्चित राष्ट्रीय चुनाव के कारण गठबंधन सरकार के गठन में देरी के लगभग 4 सप्ताह बाद उन्होंने इस पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक सांसदों के विरोध के बावजूद संसद द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री चुने जाने के एक दिन बाद 72 वर्षीय शरीफ ने देश की राजधानी इस्लामाबाद में राष्ट्रपति कार्यालय में एक शपथ ग्रहण समारोह में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया। समारोह में शरीफ ने काले रंग का पारंपरिक ओवरकोट पहना था। शपथ ग्रहण का पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आम नागरिक, सैन्य, नौकरशाही और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। शहबाज शरीफ के दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान राष्ट्रपति भवन में उनके बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे। कैबिनेट का ऐलान बाद में किया जाएगा।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को फटकार लगाई और कहा कि हम किसी देश के सामने नहीं झुकेंगे। 8 फरवरी को हुए चुनाव में जब गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहे अमेरिका को पाकिस्तान ने फटकार लगाई है। अमेरिका के सुझावों को पाकिस्तान ने नकार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि किसी भी बाहरी देश के आदेश के आगे पाकिस्तान झुकने वाला देश नहीं है। शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज बलोच ने कहा कि कोई भी देश स्वतंत्र और संप्रभु देश पाकिस्तान को आदेश नहीं दे सकता। मुमताज ने बताया कि हम पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए अपने संप्रभु अधिकारों में यकीन रखते हैं। मुमताज बलोच ने इस तरह के बयान तब दिए हैं जब उनके अमेरिकी समकक्ष ने पाकिस्तान के चुनाव में जांच की मांगों को आगे बढ़ाने की बात कही थी।
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक बेंच ने अपने फैसले पर कहा है कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार के तहत किसी तरह का कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महान फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और इससे व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ऐसी स्थिति में किया है जब बीजेपी और मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करने और कानूनी सरकारों को गिराने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि पैसे लेकर सवाल पूछना या सवाल लेकर राज्यसभा चुनाव में वोट देना पूरी तरह से संवैधानिक भावना के खिलाफ है। इसलिए ऐसे विधायकों या सांसदों को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों को संसद या विधानसभा में बोलने और ईमानदारी से काम करने की आजादी है, लेकिन भ्रष्टाचार करने की आजादी नहीं है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं गजा में तत्काल युद्ध रोकने की अमेरिका की मांग और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले गजा युद्ध का विषय। अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने गजा में मानवीय आपदा को कम करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए इसराइल की आलोचना की है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गजा में मानवीय आपदा को कम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए इसराइल की आलोचना की है। अमरीकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने कहा है कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए ज़ायोनी शासन को गजा में राहत सामग्री की सप्लाई में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। कमला हैरिस ने कहा है कि गजा में कम से कम 6 सप्ताह का युद्ध विराम होना चाहिए ताकि वहां से इसराइली बंधकों को निकाला जा सके। कई राजनीतिक टीकाकारों ने गजा में अमरीका द्वारा सहायता सामग्री गिराने और कमला हैरिस के युद्ध विराम के बयान को घड़ियाली आंसू बताए हैं। 7 अक्टूबर के बाद गजा में शुरू हुए युद्ध में अमरीका ने न सिर्फ इसराइल को सैन्य सहायता के अलावा हथियारों की आपूर्ति की है, बल्कि सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के हर प्रयास को असफल बना दिया है। 5 महीने बाद अब जबकि 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश संख्या बच्चों और महिलाओं की है, और लोग भूख से मरने लगे हैं, तो दुनिया भर में बढ़ते विरोध को देखते हुए अमरीका एक बार फिर इसराइल को बचाने के लिए आगे आया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी भी अमरीकी उपराष्ट्रपति अस्थायी और सिर्फ 6 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की बात कर रही हैं, ताकि इस दौरान इसराइली बंधकों को आजाद करवाया जा सके। ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी गजा में इसराइली जनसंहार और भूखमरी का शिकार फिलिस्तीनी बच्चों से ज्यादा इसराइली बंधकों की आजादी की चिंता है। हालांकि इससे पहले मिस्र में युद्ध विराम को लेकर बातचीत के लिए बैठक में ज़ायोनी शासन ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। ज़ायोनी अधिकारियों का कहना था कि हमास अब भी जिंदा बचे बंधकों की सूची नहीं दे रहा है। हमास का कहना है कि ज़ायोनी सेना की लगातार बमबारी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी बासिम नईम का कहना था कि व्यावहारिक तौर पर यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। गुरुवार को गजा पट्टी में राहत सामग्री लेने के लिए लाइन में लगे लोगों पर इसराइली सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थीं, जिसमें 115 लोग शहीद हो गए। विश्व स्तर पर इस घटना की व्यापक आलोचना और गजा में युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ने के बाद ही कमला हैरिस ने अस्थायी युद्ध विराम की मांग की है।
और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
पाकिस्तान में एक बार फिर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया है और उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनका कहना था कि इस्लामाबाद के सामने कई चुनौतियां हैं और उनका देश ईरान के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद की कोशिश होगी कि ईरान के साथ रिश्ते मजबूत हों। शहबाज शरीफ ने वादा किया कि पाकिस्तान की नई सरकार मेहनत से काम करेगी और देश को वर्ष 2030 तक G20 जैसे एक देश में बदल देगी। मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को सहयोगी दलों के समर्थन के नतीजे में कामयाबी मिल गई और अपेक्षा के अनुसार शहबाज शरीफ सदन के नेता चुन लिए गए। उन्हें 201 वोट मिले। उन्होंने तहरीक इंसाफ पार्टी की ओर से पेश किए गए उम्मीदवार उमर अय्यूब को शिकस्त दी। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद जो भाषण दिया उसकी विषय वस्तु से पता चलता है कि उनकी सरकार 2030 को टारगेट बनाकर राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर कुछ बुनियादी तब्दीलियां करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान अगर मजबूत होता है तो निश्चित रूप से इससे क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी। पाकिस्तान के मामलों के विशेषज्ञ अली जाहिदी का कहना है कि शहबाज शरीफ का एजेंडा तो काफी सकारात्मक नजर आता है, लेकिन उसे व्यवहारिक बनाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। कोई भी आर्थिक योजना जमीन पर उतारने के लिए शांति व स्थिरता की जरूरत होती है। पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। हालिया समय में देखने में आया कि आतंकी हमले तेज हुए, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर भी उसे सुरक्षा चुनौतियों का गंभीर रूप से सामना है। शहबाज सरकार को सबसे पहले इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ विदेशी निवेश देश में लाने की बात कर रहे हैं। इससे लगता है कि उन्हें देश की कमजोरियों का अच्छी तरह अनुमान है और वो जानते हैं कि आर्थिक पहलू से देश किस पोजिशन में है। उन्होंने निर्यात के लिए सभी राज्यों को मजबूत केंद्र बनाने की बात की और महिलाओं के रोजगार के विषय में भी वादे किए, मगर इसके लिए उन्हें तालिबान से तनावपूर्ण हो चले रिश्तों को सामान्य करने की भी कोशिश करनी होगी। इस्लामाबाद के अधिकारियों का कहना है कि तनाव का एक बड़ा कारण तालिबान है जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान कहते हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टीकाकार इस बारे में अलग राय रखते हैं। तालिबान ने सत्ता में शरीफ सरकार की वापसी का स्वागत किया है। इससे लगता है कि आपसी तनाव को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और सकारात्मक माहौल पैदा होगा, जिसमें दोनों देशों के बीच मौजूद समस्याओं को अच्छी तरह हल करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के सामने ऊर्जा का एक बड़ा मसला है और पाकिस्तान ने इस बारे में ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का समझौता किया था, लेकिन इस परियोजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के गंभीर निर्णय और ठोस कदम की बहुत जरूरत है। ईरान से रिश्ते बढ़ाने के बारे में शहबाज शरीफ के बयान से पता चलता है कि इस परियोजना को व्यवहारिक बनाने की संभावना काफी बढ़ गई है, जिसके तहत ईरान से पाकिस्तान को भारी मात्रा में गैस मिलेगी। पाकिस्तान को आर्थिक समस्याओं का भी सामना है और आतंकवाद भी उसके सामने बड़ा मुद्दा है। गैर कानूनी शरणार्थियों का विषय भी इस्लामाबाद के सामने एक बड़ी चुनौती है। ईरान सहित क्षेत्र के देशों ने शहबाज शरीफ के सत्ता में पहुंचने का स्वागत किया, जिससे लगता है कि क्षेत्र के देश भी चाहते हैं कि इस्लामाबाद के साथ सहयोग बढ़ाएं और क्षेत्र की सतह पर अच्छे और अनुकूल हालात पैदा हों, जिसमें देशों के लिए आपसी रिश्तों और सहयोग साथ ही लेन देन को बढ़ाना संभव हो सके। ये भी अहम है कि पाकिस्तान सरकार किस हद तक अमेरिका के दबाव से अपनी नीतियों और फैसलों को आजाद रख पाती है।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
विश्व दर्पण।
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। फिलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसराइल के पाशविक हमलों का क्रम जारी है। इसराइली शासन के युद्ध विमानों ने गजा के अलग अलग क्षेत्रों पर बमबारी की है। इस दौरान इसराइल के तोपखानों ने भी गजा पर अपने भीषण हमले जारी रखे। इसराइली शासन के हमलों में अब तक हजारों फिलिस्तीनी शहीद और घायल हो चुके हैं। जहां इसराइल के हमले जारी हैं, वहीं फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुटों के भी जवाबी हमले जारी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को तूफान लक्सा ऑपरेशन की शुरुआत और फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुटों के खिलाफ ज़ायनी सेना की लगातार हार के बाद से नेतन्याहू की कैबिनेट हताशा का शिकार हो गई है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुटों और फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास पर त्वरित जीत और युद्ध को शीघ्र समाप्त करने तथा गजा पर पूर्ण नियंत्रण का वादा किया था, जबकि ज़ायोनियों को फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं के खिलाफ युद्ध में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। और हालिया सप्ताहों में इस शासन के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है। टीकाकार कमर अब्बास का कहना है कि इसराइल ने गजा को तकरीबन पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन उसे अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं हुआ।
कोई मकसद अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है, बल्कि नाकामी की जो शिद्दत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि देखें, हमास एक तंजीम है और गजा एक छोटा सा इलाका है, और इसराइल फौजी तौर से एक जाहिर सी बात है बड़ी ताकत समझा जाता है, और उसकी ताकत जो भी हो उसकी कोई बात ही नहीं है। उसके साथ अमेरिका, और अमेरिका तो खैर पूरी तरह से ही है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि तो अमेरिका ही लड़ रहा है जंग, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुल्क मगरबी ममालिक वाज़ तौर पर उसका साथ दे रहे हैं, और बहुत से इलाकाई ममालिक खुफिया तौर पर उसका साथ दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े बड़े साथियों और मददगारों के साथ इतने दिनों से इसराइल इतना भी नहीं कर पाया है कि गजा से रॉकेट और मिसाइल जो आ रहे हैं उन्हें रोक सके, यानी उनका सिलसिला बंद कर सके। वो तो बड़ी बात है कि हमास को ख़त्म कर दे या उसके अराकीन को शहीद या कैद कर ले, वो तो आखिरी बात है। उस जो ये तो आसान, बहरहाल हमला करने के लिए मिसाइल के लिए मिसाइल फायर करने के लिए जाहिर सी बात है एक जगह होती है, खुली जगह में होना चाहिए, और वहाँ से फिर फायर होते हैं मिसाइल, उसका भी पता लगाया जा सकता है कि मिसाइल कहाँ से फायर हो रहे हैं। जिस तरह से सैटेलाइट्स और ये जो सारी जदीद टेक्नोलॉजी है वो तो जाहिर सी बात है इन्हीं लोगों के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं सका है। कैदियों की जो रिहाई है, उन्हें आज़ाद कराने तो बहुत दूर की बात है, अभी तक यही नहीं यानी पता लगा पाए हैं ये लोग कि जो हमास के सरबराह हैं जिनको बहुत ही शिद्दत से तलाश किया जा रहा है यही सनवार, वो हैं कहाँ।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ज़ायनी शासन को अमरीका और पश्चिमी सरकारों के व्यापक समर्थन से इस शासन के अधिकारियों को मदद नहीं मिली और वैश्विक जनमत के मैदान में इसराइल को फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की हत्याओं का जिम्मेदार माना गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिणी अफ्रीकी वकीलों की शिकायत पर आयोजित अपनी बैठकों में गजा में ज़ायनी शासन के अपराधों को नरसंहार करार दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अमरीका पूरी तरह से इसराइल का साथ दे रहा है और बच्चों व महिलाओं की हत्या का दिखावे का विरोध करता है, जबकि साथ ही युद्ध विराम को वीटो भी कर रहा है। इस बात पर पाकिस्तान के टीकाकार राशिद अहद का कहना है,
ये तो अमरीका की बहुत बड़ी मुनाफकत है और ये मुनाफकत भी उसकी बुजदिली की अलामत है और अमेरिका एक नाकाबिल एतबार ये साबित कर रहा है अपने आप को, वो किसी भी डील में वो काबिल एतबार नहीं है, मुनाफकत से काम ले रहा है। अब देखिए ना, शुरू से ये बाइडन या अमेरिका के दूसरे लीडर्स जो है रहनुमा है वो यही कहते रहे कि भाई रेस्ट्रेंट से काम लीजिए, यानी तहमुल और सब्र से काम लें, तहमुल से काम लें। लेकिन ये तहमुल सिर्फ हमास के लिए होता था, मसलन के अगर इसराइल कोई आपके खिलाफ जा रहा है, इकदाम कर रहा है, तो हमास को तहमुल से काम लेना चाहिए। तो उसका तो हमेशा से डबल स्टैंडर्ड रहा है और तो ये बात अब तो अजहन में शम्स हो चुकी है, बिल्कुल वाशिगाफ हो चुकी है कि अमरीका न सिर्फ जंग को जारी करना रखता है बल्कि वो जंग का दायरा फैलाना भी चाहता है और जंग में मजीद शिद्दत पैदा करना चाहता है, जो कि बहरहाल लेकिन ये बात भी उसको मालूम हो जाएगी और ये हालात बता रहे हैं कि सिवाय मासूमों के कत्ले आम को ना इसराइल को कुछ मिल पा रहा है ना अमेरिका को कुछ मिल पा रहा है। अमेरिका ने इस वक्त बरतानिया के साथ मिलकर के जो कुछ यमन के अंसारुल्लाह पर यमनियों पर हमला किया तो उसमें कोई उनका मिलिट्रीली यानी फौजी लिहाज से कोई नुकसान का ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए कि थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद अंसारुल्लाह का जवाब आता है और बरतानिया की और अमेरिका की कश्ती को हिट करते हैं उनके मिसाइल्स और उसमें जहाज कई जहाज डूब जाते हैं। तो फायदा क्या है ऐसी जंग का, यह कि सिवाय कुछ मासूमों का कत्ल होगा, खून बहेगा और यही हुआ है कि अभी तक अमेरिका ने किया क्या है सिवाय इसके अमेरिका ने इसराइल की हिमायत करके इस वक्त 30,000 से ज्यादा मासूम लोगों का गजा में खून बहाया है और उसमें भी ज्यादा खवातीन और बच्चे हैं और इस वक्त 70,000 से ज्यादा जख्मी हैं। तो अमेरिका की जो ये मुनाफिकाना रविश है ये खित्ते के हालात को भी बहुत ही संगीन और पेचीदा बना रही है और दुनिया के हालात को भी।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमरीकी वायुसेना के एक सैनिक ने इसराइल के दूतावास के सामने आत्मदाह कर लिया। ये घटना जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या ये घटना बाइडेन प्रशासन को प्रभावित कर सकेगी? विचार सुनिए टीकाकार कमर अब्बास के।
देखिये, हमें तो नहीं लगता है कि एक खुदसोजी से बाइडेन इंतजामिया पर कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, ये है कि इसका जो असर होगा वो यकीनन आवाम पर बहुत होगा और भी खबर यह है कि वो मौत हो चुकी है उस फौजी अफसर की। और लेकिन जहां तक बाइडेन इंतजामिया की बात है तो वो अगर आवाम में गम व गुस्सा ज़्यादा बढ़ा तो यकीनन चूंकि इलेक्शन है तो वो इस पर तवज्जो देंगे, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि बरह रास्त तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी की मौत से बाइडेन इंतजामिया पर असर होने वाला होता कि बहुत सारे दाखिली मसाइल के लिए फौजी, कितने फौजी इससे पहले भी अमेरिका में उन्होंने खुदकुशी की है, इराक जंग के लिए उस दौरान खुदकुशी की है। इससे पहले कोई पहला वाकया नहीं है इस तरह का, लेकिन हाँ इस हवाले से बहुत ही अहम ये बात है कि गज़ा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए क्या है, तो ये इस हवाले से बहुत अहम है और यकीनन आवाम और दुनिया पर इसका काफ़ी असर होगा, रायामा या यूं भी पूरी दुनिया की, जैसा कि अब्दुल बारी अतवान जो बड़े मारूफ तज़िया निगार हैं अरब दुनिया के, उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि कितना अच्छा होता अगर हम, कितनी खुशी होती अगर हम ये सुनते कि किसी अरब सहाफ़ी ने या किसी अरब फौजी ने ये इस तरह का कोई कदम उठाया, या किसी अरब ओहदेदार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी समा के अनुसार फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने घोषणा की है कि आत्मदाह की यह घटना जो बुशनल की मृत्यु पर समाप्त हुई, नरसंहार में फिलिस्तीनी जनता की भागीदारी पर अमरीकी जनता का रुख नहीं है, ये जनता की बढ़ती नाराजगी का चिन्ह है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने मारे गए अमरीकी सैनिक बुशनल के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उनके आत्मदाह के कार्य को मानवीय मूल्यों की रक्षा और मजलूम फिलिस्तीनियों के समर्थन के रूप में याद किया। ठेकाकार राशिद अहद का कहना है कि यूरोप की जनता अपने अधिकारियों के फैसले के खिलाफ सड़कों पर है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल हिमायत कर रहे हैं, और इसके बावजूद कि जबकि यूरोप के आवाम, आप अंदाजा कीजिए कि यूरोप के आवाम अपनी हुकूमतों के सख्त मुखालिफ हों और बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे हैं अपनी हुकूमत की इस गैर मुनसिफाना और जालिमाना पॉलिसीज के खिलाफ। मैं देख रहा था कि अभी जर्मनी के शहर बर्लिन में वो फिल्म फेस्टिवल होता था, वहां एक बहुत बड़े फिल्म साज ने, फिल्म मेकर जिनका नाम गालिबन बेन रसल है, और उन्होंने फलस्तीनी रुमाल यानी बांधा हुआ था, और जब उनको यानी इस फेस्टिवल में सामने आकर के साफ कहा कि मैसेकर है, यानी कि इसराइल में, यानी इसराइल में फलस्तीनी गजा के आवाम का बिल्कुल वहशियाना मैसेकर है, जब उनके अपने और भी कई फिल्म एक्टर्स ने वहां पर एहतजाज किया, तो अब बताइए कि फिल्म एक्टर्स तक और फिल्म मेकर्स तक इनको बहुत ही टफ दिया, और उस पर जर्मनी ने बजाय इसके के खामोश यानी कि शर्म से खामोश रहती जर्मनी की हुकूमत, उसने इन्वेस्टिगेशन का यानी कि उनके खिलाफ ये दे दिया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसलिए कि ये वन साइडेड है, एक तरफा जो है किसी को मोरी के इल्जाम ठहराना, ये बताइए, जबकि यानी कि फलस्तीनी कौम की 75 साल से मजलूमियत किसी से छुपी नहीं है बिल्कुल, और अब रोज बरस और खुद खासतौर से 7 अक्टूबर के यानी कि हमास के हमले के बाद तो जवाबी इकदाम, 75 साल की जालिमाना का यानी इस सेहूनी इकदाम के नतीजे में 7 अक्टूबर को जो एक बड़ा ही यानी मार्कतुल आरा जवाबी इकदाम किया है हमास ने, उसके बाद से तो जो इसराइल ने वहशतगरी और बर्बरियत का मुजाहरा किया है मासूम लोगों को मारने का, वो तो किसी से छपी ढकी छुपी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप के आवाम, बावजूद है कि उनके आवाम भी मुस्तकिल यानी बेदार हैं और अपनी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं अपने एहतजाज के जरिए कि तुम जो है वो इसराइल की हिमायत के बजाय इसराइल को इन जालिमाना कार्रवाइयों से रोको और फलस्तीनियों के मुतालबात को पूरा करो जो उनकी आजादी का मुतालबा है।
इसी के साथ कार्यक्रम का समय पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
Thank you.
फारसी साहित्य का अनमोल रत्न।
दोस्तों, कार्यक्रम फारसी साहित्य का अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं स्वाति और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ईरान में ऐसे बहुत से कवि, साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, विद्वान और लेखक पैदा हुए हैं जो वर्षों से ईरानी होने के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बाद के कुछ भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इस प्रकार के महान व्यक्तित्व इस समय ईरान की भौगोलिक सीमा से बाहर हैं। इसी प्रकार के महान लोगों में से एक प्राचीन ईरान के अति प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात साहित्यकार निजामी भी हैं। इनका पूरा नाम है अबू मोहम्मद इलियास निजामी गंजवी। फारसी साहित्य के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हकीम अबू मोहम्मद इलियास बाद में निजामी गंजवी के नाम से मशहूर हुए।
इससे पहले हम ईरान के महान कवि हकीम अबू मोहम्मद इलियास निजामी गंजवी के जीवन, उनकी रचनाओं, विचारों और अन्य साहित्यकारों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार से हमने उनके एकांतवास के बारे में भी बताया। बाद में हमने उनकी एक रचना पंच गंज की कहानी खुसरो और शीरिन की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा का क्रम अब भी जारी है जिसको हम यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं।
निजामी गंजवी ने खुसरो व शीरिन नामक अपनी रचना को फिरदौसी के शाहनामे के आधार पर लिखा था, किंतु इस अंतर के साथ कि उनके अपने क्षेत्र में खुसरो और शीरिन की कहानी जिस अंदाज में प्रचलित थी उसी को उन्होंने पेश किया। इस रचना को लिखकर निजामी ने कविता जगत में काव्य कृति की ऐसी रचना की है कि शताब्दियों के बाद भी कोई भी उन जैसी काव्य कृति की रचना नहीं कर पाया।
जिन साहित्यकारों या कवियों ने खुसरो व शीरिन की कहानी लिखी है उनको तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनमें से एक गुट उनका है जिन्होंने खुसरो और शीरिन की कहानी के लिए कुछ प्राचीन कहानियों और कथाओं का सहारा लिया है। उन्होंने अपनी रचना को निजामी की रचना के समतुल्य बनाने का बहुत प्रयास किया। इतने प्रयास करने के बावजूद वे अपनी रचना को निजामी की रचना जैसा नहीं बना पाए। दूसरा गुट उन लोगों का है जिन्होंने खुसरो और शीरिन की कहानी या किसी अन्य प्रेम कहानी के स्थान पर अपनी रचना में किसी धार्मिक कहानी को स्थान दिया है।
दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने धार्मिक गाथा के स्थान पर रहस्यमयी कहानियों का सहारा लिया है। हालांकि उन्होंने प्रयास यही किया कि उनकी रचना निजामी के स्तर की हो। इस प्रकार के साहित्यकारों में सबसे ऊपर अब्दुल रहमान जामी का नाम आता है जो नवी हिजरी कमरी के प्रख्यात कवि रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य गुट भी है जिसने कविता के स्पष्ट मानदंडों के अतिरिक्त निजामी की कहानी की सामग्री से लाभ उठाया है। इस प्रकार के लोगों ने खुसरो और शीरिन की कहानी में अपनी तरफ से कुछ घटाया और बढ़ाया भी है। इस छोटे से कार्यक्रम में हम उन लोगों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बता सकते जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, किंतु इनमें से कुछ नामी गिरामी लोगों का उल्लेख कर सकते हैं जो निजामी के अनुसरणकर्ता माने जाते हैं।
नवी हिजरी कमरी के दौरान फारसी साहित्य की दुनिया में एक नाम रहा है जिसको जामी के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम मौलाना अब्दुल रहमान जामी था। उन्होंने खुसरो और शीरिन की प्रेम कहानी के स्थान पर एक धार्मिक कहानी पेश की है जो यूसुफ और जुलेखा की है। यह कहानी बहुत ही पुरानी है जिसका कुछ उल्लेख पवित्र कुरान में भी मिलता है। जामी ने अपनी रचना में निजामी की कहानी से लाभ उठाया है। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वह निजामी की कहानी की टू कॉपी है जिसके शेर एक दूसरे से बहुत ही मिलते हैं।
खुसरो और शीरीन की कहानी में शुरू में तो दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला मिलता है, लेकिन बाद में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, अंततः दोनों में जुदाई हो जाती है। जुदाई की ये पीड़ा हमको यूसुफ और जुलेखा के किस्से में भी मिलती है। जामी ने इस कहानी में अपनी ओर से कुछ घटाने या बढ़ाने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पवित्र कुरान की कहानी है जिसमें अपनी ओर से कुछ नहीं किया जाना चाहिए। इस कहानी में हजरत यूसुफ किसी भी तरह से खुसरो की भांति किसी भी सांसारिक व्यक्तित्व से बंधे हुए नहीं है, बल्कि उनका जुड़ाव और लगाव सर्वशक्तिमान ईश्वर से है। उन्होंने अपना दिल पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दिया है। ये स्थिति अजीज मिस्र की मौत तक जारी रहती है जो जुलेखा का पति था।
जब हजरत यूसुफ की दुआ से जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और फिर से जवान हो जाती हैं। इस कथा में बताया गया है कि ऐसा होने के बाद यूसुफ जुलेखा से प्रेम करने लगते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। याद रहे कि अरबी और फारसी भाषा की प्राचीन ऐतिहासिक और साहित्यिक किताबों में यूसुफ और जुलेखा के किस्से मिलते हैं, किंतु खुसरो और शीरीन की कहानी से यह बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें सांसारिक प्रेम की बात नहीं है। कहानी में बताया गया है कि यूसुफ की मृत्यु के बाद जुलेखा कई दिनों तक रोती रहती हैं। वे इतना रोती हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती हैं। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद वे यूसुफ की कब्र पर गिर जाती हैं। कहानी के अनुसार वे इतना रोती हैं कि वहीं पर उनकी जान निकल जाती है।
निजामी की कहानी में खुसरो और शीरीन की कहानी को सच्चे प्रेम की कहानी बताया गया है। ये दो लोगों के बीच की कहानी है जिसमें मानवीय आकर्षण पाए जाते हैं। इसको लेखक ने प्राकृतिक बताया है, कहा है कि लगभग दुनिया के सारे ही लोगों में इसका अनुभव किया है। लेखक के अनुसार ये एक ऐसी चीज है जिससे महान लोग और रहस्यवादी भी नहीं बच पाए हैं। शायद यही वजह है कि निजामी के शेर और उनकी कविताएं आज भी पढ़ने वाले के मन को छू लेती हैं। हालांकि उन्होंने इसको आज से शताब्दियों पहले लिखा था, लेकिन आज भी वो बहुत से साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।
हालांकि जामी की कविताओं में वह बात नहीं है जो निजामी की कविताओं में है, जबकि जामी तो निजामी से लगभग 3 शताब्दियों के बाद के कवि हैं। उनकी कहानियों में निजामी जैसी बात नहीं है और न ही उतना पैनापन। निजामी की तुलना में वे बहुत महत्व नहीं रखती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनकी कहानी में उन्होंने एक आसमानी किस्से को जमीनी किस्से से मिलाने की कोशिश की, जिसके कारण उसका महत्व समाप्त हो गया। हालांकि अगर इसको विपरीत शैली में रखा जाता तो शायद अधिक उचित होता, अर्थात पहले सांसारिक प्रेम और अंत में ईश्वरीय इश्क। ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा में जामी ने निजामी की शैली को उल्टा करके रखने की कोशिश की है, जिससे उनका प्रयास विफल हो गया।
दोस्तों, यूसुफ और जुलेखा की कहानी संक्षेप में इस प्रकार से है कि जुलेखा यूसुफ को बहुत प्यार करती थीं। वे उनको मन की गहराइयों से चाहती थीं। यूसुफ की चाहत में वे बूढ़ी हो गईं और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। बाद में हजरत यूसुफ की दुआ की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई और वे स्वयं भी जवान हो गईं। इसके बाद उनकी शादी यूसुफ से हो गई। विशेष बात यह है कि इस कहानी को जामी ने गढ़ा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको पवित्र कुरान की व्याख्या की किताबों से लिया है। बहुत ही आंशिक रूप में उन्होंने कहानी में कुछ बदलाव किए हैं, वे भी असल कहानी में नहीं बल्कि उससे संबंधित कुछ बातों में। यही वजह है कि जामी की यूसुफ और जुलेखा की कहानी ना तो पूरी तरह से मानवीय और आध्यात्मिक है और न ही पूरी तरह से सांस्कृतिक प्रेम पर आधारित है।
अमीर खुसरो देलवी और जामी के भांजे हातेफी भी उन कवियों में शामिल रहे हैं जिन्होंने निजामी की, खुसरो और शिरीन की नकल करते हुए रचनाएं की हैं। यह बात सही है कि खुसरो और शिरीन की रचना करते समय निजामी ने महाकवि फिरदौसी के शाहनामे से लाभ उठाया है, किंतु इसको उन्होंने अपने हिसाब और अपनी योग्यताओं के आधार पर लिखा है। इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हकीम अबू मोहम्मद इलियास निजामी गंजवी को इस प्रकार के साहित्य का संस्थापक कहा जा सकता है। उनकी महानता को इस बात से समझा जा सकता है कि कोई भी उनकी भांति उस शिखर पर नहीं पहुंच सका जिस पर वे पहुंचे थे।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फारसी साहित्य का अनमोल रत्न, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति ने कहा कि गजा में नरसंहार और युद्ध अपराध की जड़ें जायनी कब्जे के 75 साल के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते, खुदा हाफिज। Thank you.